ओम शांति। माया एक रूप अनेक। तो आज माया भय के रूप में आई है। भय से तो सभी परिचित होंगे। आज मॉर्निंग क्लास में हमने इंग्लिश क्लास में भय के बारे में अच्छी जानकारी ली। बस वही उसी को हिंदी में इजी हो गया। तो भय, डर, दहशत, आतंक, भय तेरे कितने नाम। तो भय के नाम, भय का रूप क्या है? जब भयभीत हो तो मिरर में देख सकते हैं अपने आप को। नाम हो गया, रूप हो गया। देश, रहता कहाँ है वो? अंतर मन में, कोई न कोई सिचुएशन के पीछे, कोई परिस्थिति के पीछे से भय आता है। या किसी से घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या द्वेष है, तो उसके पीछे भी, उसके अंदर भी कोई न कोई डर होता है। उसका कर्तव्य क्या है भय के? दुख देना, हर्ट करना, परेशान करना, बेचैन कर देना, रुलाना। तो डर, भय बचपन से लेके अब तक हर मनुष्य के जीवन में कोई न कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे दुख का वो फील करता है, दुख को महसूस करता है। फिर वो जो दुख है कुछ समय तक ही रहता है, फिर बाद में चला जाता है। फिर नेक्स्ट कोई और अलग प्रकार से किसी न किसी तरीके से उसके सामने कोई परिस्थिति आती है, दुख होता है, तो फिर वो डरता है। ऐसे डर का संस्कार धीरे धीरे बन जाता है। या कोई सीरियल्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, जैसे भूत है, या कोई ऐसे सीरियल देखते हैं जिसमें मर्डर, हत्या, ये सब सारी चीज़ें दिखती हैं, तो वो देख देख कर भी धीरे धीरे अंतर मन में वो डर समा जाता है, अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के बारे में भाई साहब ने बताया, इसको हम लास्ट में फिर देखेंगे एक बार और फिर हम लास्ट में समय रहेगा तो सभी अवचेतन मन की गहराई में उतरेंगे, फिर भय को कैसे निकालना वो देखेंगे। तो जो भी हमारे अंतर मन में जो भय चला जाता है वो फिर किसी न किसी रूप में हमारे सामने बाहर आता है। तो वो किस रूप में बाहर आता है? जैसे कोई न कोई एक प्रश्न के रूप में कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो क्या होगा, या कोई हम एम्बिशन लिए हुए हैं, कोई हम डिजायर है हमारी, कोई इच्छा है, वो अगर प्राप्ति नहीं होती है उसका भय, या कहीं ऐसा न हुआ तो क्या होगा। तो ये जो हमारे जीवन भर के जो सारे डर है वो इन्हीं दो प्रश्नों के अराउंड घूमते हैं, कहीं ऐसा न हो तो क्या होगा, या कहीं ऐसा न हुआ तो क्या होगा। तो ये डर, तो दूसरा डर कहाँ से आता है? देहभान से। बाबा बोलते हैं कि देहभान मूल सभी विकारों की जड़ है। तो देहभान क्या है? जब भी हम अपने बारे में सोचते हैं तो पहले क्या आता है हमारे सामने? फेस, रूप, रंग, अपना पोस्ट, पोजीशन, अपना एज, अपनी हाइट, ये सारी चीज़ें, मतलब कि फर्स्ट जो सामने आता है हमारे, तो हमारा रूप ही सामने आता है। वो मतलब वो कहीं ना कहीं अंदर से रहता है कि मैं ऐसा हूँ, दिखने में मैं ऐसा हूँ, तो वो देह भान, मतलब उस भान में हम रहते हैं। तो बाबा ने हमें क्या बताया है? आत्मिक स्मृति बनाने के लिए, कि अभी हमें हमेशा इस स्मृति में ही रहना है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, एक आत्मा हूँ, मतलब मेरा रूप क्या है, एक ज्योति बिंदु है, मेरा रंग क्या है, कोई भी, गोल्डन लाइट, रेड, वाइट, ये मेरा रूप है। मेरा घर कहाँ है, परम धाम में। मेरा कौन है, शिव बाबा। मैं कौन, दादी जानकी जी अक्सर कहा करते थे, मैं कौन और मेरा कौन, ये अक्सर इसकी धुन लगी रहनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब भी किसी को हम देखते हैं, किसी से मिलते हैं, तो फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, उसे किस रूप से जानते हैं, उसके नाम से, उसके देह से ही जानते हैं, लेकिन वो फर्स्ट क्या आना चाहिए, वो कौन है, वो आत्मा है। ये होना चाहिए, तब हम देहभान से मुक्त होंगे, तो धीरे धीरे डर से मुक्त होंगे। दूसरा, डर क्या परमानेंट रहता है, डर का कोई अस्तित्व है क्या? डर का कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो आज है कल नहीं है। जैसे बचपन में कोई छोटा बच्चा है, उसको डरा दिया जाता है कि बाहर नहीं जाना, नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, तो या भूत के बारे में। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो सोचता है कि बिल्ली से भी कोई डरना होता है क्या, फिर बाद में बिल्ली को सम डराता है। हम बचपन में जब अपने गांव में थे, तो एक दिन सभी बच्चे जो मिलके क्रिकेट खेलने गए थे, एक बहुत बड़ा बागीचा था, उसमें बड़े बड़े झाड़ थे, उस बीच में हम खेल रहे थे, और खेलने वाले हम लोग थे, फिर देखने वाले भी बहुत थे, तो लगभग 100-150 के आसपास थे सभी। और जो जहाँ खेल रहे थे वहाँ एक बहुत बड़ा झाड़ था, उस पर एक बहुत बड़ा छत्ता मधुमक्खी का, बड़ा मधुमक्खी का उधर था, और किसी ने जानबूझ करके उस पर पत्थर मार दिया मधुमक्खियों के ऊपर, और हम उस समय फील्डिंग कर रहे थे, और चारों तरफ फील्ड के चारों तरफ देखने वाले, सब खेलने वाले बीच में, वो मधुमक्खी क्या के सबके ऊपर टूट पड़ी एक साथ, चारों दिशाओं में, और इतना भयानक रूप से वो उनका वो रूप था कि इतनी सभी जो जिधर थे वो चारों दिशाओं में भागे वो, लेकिन वो किसी को छोड़ ही नहीं, वो सबका पीछा करती रही। कोई तो पानी में, तालाब में कूद गए, लेकिन कब तक पानी में डूबे रहेंगे, जब वो ऊपर आते तो सिर पर डंग मारती थी। तो कोई तो मिट्टी में अपने मुंह को छिपाते, ऐसे रगड़ते थे मुंह को बचने के लिए। एक छोटा बच्चा मतलब कि भाग रहा था चिल्लाते चिल्लाते, तो एक बूढ़ी माता जी खेत में थी काम करने वाली, वो अपने आंचल में छुपा लिया, तो मधुमक्खियों ने बूढ़ी माता को इतना डंक मारा कि वो बेहोश हो गई, फिर उन्हें चारपाई पे फिर उठा कर ले जाना पड़ा। और हम जो भागे मतलब मार्केट की तरफ, जो टाउन जहाँ हम रहते उधर, और जिसके तरफ भी जा रहे हैं बचाओ बचाओ करके, उतना ऐसे उतना तेज तो कभी जीवन भागा नहीं, इतना तेज भागे थे सभी लोग। और जिसके पास जा रहे सब भगा रहे कि नहीं भागो यहाँ से, भागो मेरे पास से। फिर हमने क्या किया कि एक जहाँ आटा पीसते चक्की है, बड़ा मकान था, तो उसके अंदर में घुस गया, एक कॉर्नर, बिल्कुल अंधेरा था, तो वहाँ चुपचाप खड़े हो गए अंधेरे में, फिर मधुमक्खी वापस चली गई तो बच गया। तो उस समय ना मधुमक्खियों से इतना डर हो गया था सभी के अंदर कि एक दो भी दिखती थी ना आसपास, कई दिनों तो बहुत डर लगता था मधुमक्खियों से। और मोस्टली सभी लोगों के इंजेक्शन लगे थे, जिनको बहुत ज़्यादा डंक मारे थे। तो फिर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे हम बड़े हुए उनसे डर खत्म हो गया। तो डर का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, आज है कल नहीं है। डर के बारे में संसार के लोगों में यह मान्यता है कि डर भी थोड़ा होना चाहिए, अगर डर है तो कोई भी गलत कार्य से बचेंगे। तो इसको हम 2-3 अनुभवों से देखेंगे। या मधुबन में एक 2-3 साल पहले एक बहन आई थी सेवा में, तो अपना अनुभव बता रही थी कि जब वो ज्ञान में आई तो ज्ञान का नशा, बाबा के मिलने का नशा, प्योरिटी का नशा, बहुत उमंग उत्साह में थी, और सभी भाई बहनों के साथ घुल मिल कर वो सेवा करती थी। जब यहाँ आई फिर यहाँ वैरायटी प्रकार की आत्माएं, वैरायटी प्रकार के लोगों के अनुभव, विशेषतः माया के बारे में, माया ऐसी होती है, माया ऐसी होती है, वैसी होती है, ऐसे लोगों को कैसे माया उठा के ले जाती है, फिर उसके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे वो एक डर सा बैठ गया। और वो डर कैसा कि जब भी कोई भाई को देखती वो तो रास्ता बदल लेती अपना डर के मारे, कि मतलब भाई मतलब देह मतलब कि माया मतलब कि विकार। ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे डर के बारे में चिंतन करती गई वो धीरे धीरे उसके अंदर डर अंदर बैठता गया। किसी से सामने बात भी करना होता तो सामने नजर उठा के बात नहीं करती, इधर या उधर, या मन में रहता है कब बात पूरी हो हम यहाँ से जल्दी भागे, तो अपना ही अनुभव बता रहे थे। फिर हमने पूछा कि फिर अभी क्या, अभी भी डर है? बोले नहीं अभी डर नहीं। फिर हमने पूछा क्या किया? फिर उसने बताया कि हमने क्या किया, बाबा को लेटर लिखा, बाबा से रूरियान किया, फिर चिंतन किया इसके बारे में, फिर भी नहीं जा रहा था। तो फिर एक दिन ऐसी बाबा कमरे में बैठी थी तो उसके अंतर मन से एक आवाज आया कि उन्हें देखो और उनको सम्मान दो, जिससे भी मिलो प्यार से मिलो और उनको सम्मान दो। क्योंकि उसके मन में क्या हो गया था कि देह मतलब कि माया मतलब कि विकार, अंदर में घृणा भी आ गया था। उस दिन से उसने क्या किया कि सभी को जो भी मिले प्यार से ओम शांति बोलना, ओम शांति भाई ऐसे करना। फिर जैसे उसने एक और बात बताई कि जैसे हम घर में लौकिक में हमारे भाई है कोई, पिताजी है, उनके प्रति कितना हमारा रिस्पेक्ट है, सम्मान है, तो उसी तरह से सभी को उस भाव से देखने लगी। तो इस रूप में भी वो देखने लगे कि ये जो शरीर है, जैसे मेरा शरीर है, बाबा बोलते कि ये मंदिर है, ऐसे वो भी भाई है, भल उसका ये मंदिर है, उसके अंदर चैतन्य मूर्ति विराजमान है। तो इस तरह से धीरे धीरे उसका भय समाप्त हो गया। दूसरा एक भाई अपना अनुभव बता रहा था कि जब मतलब हम लोग 4-5 कुमार थे तो नए नए सभी ज्ञान में थे, तो शाम को मिलते थे तो अनुभव की बातें, कुछ ज्ञान की बातें करते थे। तो एक भाई अपना अनुभव बता रहा था कि जब वो एक दिन सुबह ऑफिस जा रहा था तो बस में बैठा और विंडोज की सीट लिया, साइड की सीट खाली थी, तो एक नेक्स्ट स्टॉप पर एक बहन आके वहां बैठ गई। अब बहन बैठ गई तो वो क्या खिड़की की तरफ सिमट के बैठ गया ऐसे। अब बस ब्रेकर आए तो थोड़ा जंप ले तो अंग थोड़ा टच हो तो और खिड़की की तरफ सिमटते जा रहा है। तो वो जो बहन थी वो मतलब कि ज्ञान में नहीं चलने वाली थी, बाहर की थी, तो वो समझ गई कि ये डर रहा है। तो वो क्या किया, जानबूझ कर जैसे बस ऐसे जंप ले ना तो जानबूझ कर उसके ऊपर आए, अंग पर आए और वो खिड़की के पास और सिमटता जाए। अब अंदर अंदर क्या चले, सिम अंदर अंदर मैं आत्मा हूँ बाबा 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 ऐसे कर रहा है। वो बता रहा था कि लगभग वो आधे घंटे तक सफर में थी वो, फिर बाद में उसे उतर गई तो हाँ वो मतलब अनुभव बता रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे ये पता है कि ये कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कोई बार, लेकिन अंदर से एक डर सा था उसको, क्योंकि और बता रहा था जब ज्ञान में नहीं था तो कोई डर नहीं था। तो बाबा एक बात बताते हैं कि एक बहुत मतलब नियम मर्यादा एक अलग चीज है, भाई का बहन से अंग में अंग टच नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम और मर्यादा अलग है और डर अलग है, ये दोनों दो चीज है। हम इसे देखें तो मधुमक्खी को यदि हम प्यार से देखते हैं, उसके गुणों के बारे में अनुभव करते हैं तो कोई डर नहीं है, लेकिन अगर उसे छेड़ते हैं तो ऊपर टूट पड़ेगी। जैसे गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो उसके रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं ट्रैफिक के। अगर रूल्स और रेगुलेशन को अगर डर के मारे फॉलो कर रहे हैं, इस डर से कि ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी, तो क्या होगा, जब तक सामने पुलिस है तो सही से ड्राइविंग करेंगे, कोई भी नियम तोड़ेंगे नहीं, सिग्नल तोड़ेंगे नहीं, लेकिन जब पुलिस नहीं है, वो नहीं है तो क्या करेंगे, वो सिग्नल को तोड़ करके आगे जाएंगे, और जब तोड़ करके आगे जाएंगे तो एक अंदर से डर रहेगा, इधर उधर देखते जाता कहीं पुलिस देख तो नहीं रही है, और इसमें क्या है दुर्घटना के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। अगर वहीं दूसरा कोई व्यक्ति है, यदि वो सोच रहा है कि नहीं जो नियम बनाएंगे हमारे सेफ्टी के लिए बना गया है, तो उस नियम के प्रति वो सच्चाई से वफादारी से वो मतलब कि अपने बारे में भी सोच रहा है, फिर समाज के बारे में भी सोच रहा है कि लोगों को कोई नुकसान नहीं हो, अंदर सच्चाई है, तो उसे उस नियम को फॉलो करने के लिए कोई डर की बात नहीं है। वो चाहे पुलिस रहे या न रहे उस नियम को फॉलो करते हुए चलेगा। तो ज़्यादातर ऐसी जो नियम्स और रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे वो डर के कारण फॉलो नहीं हो सकते हैं। जब तक अंदर सच्चाई न रहे, सफाई न रहे, वफादारी न रहे, हम किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। पति पत्नी हैं, अगर उनमें आपस में सच्चा स्नेह है, सच्चा प्यार है, एक दो फेथ है, तो कहाँ भी रहेंगे कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, आपस में कोई जो रिलेशन है, जो संबंध, उसमें कोई दरार नहीं है। अगर फेथ नहीं है, अगर सच्चा प्रेम नहीं है, तो सामने सामने रहेंगे तो एक भल दिखावे के लिए, हाँ हम पत्नीवर्ता है या पतिवर्ता जो भी है, लेकिन जैसे ही दूर होंगे, मतलब कि सामने नहीं है, तो किसी अगर अलग से किसी से अटैचमेंट है तो उसमें डर रहेगा, कहीं पकड़ा गया तो क्या होगा, कहीं पकड़ी गई तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि डर है। वहाँ पर जहाँ पर सच्चाई है, जहाँ सफाई है, हमारे जो यज्ञ की स्थापना हुई, जो आदि रत्न थे जिन्होंने मतलब कि जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला, बाबा का परिचय मिला, वो अपना घर बार छोड़ दिए। इतने बड़े बड़े घर के रिच फैमिली से जो दादियां थी, उन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया। कितने जो बहनें थी, कितने मार खाए उन्होंने, सिर फट गया, ब्लड आया, लेकिन उसके पीछे क्या था, वो प्रभु प्रेम था उसके पीछे। और आज जो हमारे जो विशेषतः जो हम उन टीचर्स जो बहनें हैं उनके उनके प्रति बहुत बहुत सत सत नमन करते हैं, जो इतनी सारी टीचर्स बहनें जो सरेंडर हैं, समर्पित होकर के सारे संसार के कल्याण के लिए उनके प्रति रहम दिल की भावना करते हुए विश्व की सेवा में लगी हुई हैं, चाहे ऐसे जो युगल हैं पति पत्नी जो घर गृहस्थ में रहते भी वो प्योरिटी को धारण करते हुए सारे संसार के लिए, खासकर वो महात्माओं के लिए, धर्मात्माओं के लिए चैलेंज बने हुए हैं, उसके पीछे भी क्या है, वो परमात्म प्यार है, वो प्योरिटी की पावर है। तो हमें तो उन पर गर्व होना चाहिए, गर्व तो है ही। तो डर को हम बता रहे थे कि भय से, मतलब कोई भी नियम को भय से हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अंदर में सच्चाई चाहिए, वफादारी चाहिए, परमात्म प्रेम चाहिए। और भय कहाँ कहाँ से आता है वो तो सब लोगों ने जान लिया, भय के प्रकार कितने हैं, वास्तविक भय, काल्पनिक भय, फिर व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, पूर्व जन्म से, हाँ फोबिया जो संस्कार बन जाते हैं अंदर, जो अवचेतन मन में चले जाते हैं। तो अवचेतन मन के ऊपर आते हैं, हमने भाई साहब से बहुत सारे इसमें सीखा है। आज संसार के लोग अवचेतन मन का प्रयोग बहुत कर रहे हैं आजकल, उनके ऊपर कितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारे मनोचिकित्सक या जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में हैं वो लोग इसके ऊपर रिसर्च करके बुक्स लिखे हैं, जैसे जोसेफ मर्फी एक है मनोचिकित्सक, या एक कारपेंटर है, ऐसे बहुत सारे हैं। उन्होंने मतलब कि जो उसके बारे में बताया अवचेतन मन के बारे में, तो अवचेतन मन का प्रयोग करके कैसे वो अपनी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं, फिर अपने जो एम्बिशन, जो इच्छाएं रहती है वो पूरी करते हैं, उनमें बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कैसे कोई किसी मतलब कि कोई व्यक्ति एरोप्लेन में एरोप्लेन क्रैश हुई तो उसकी हड्डियाँ सारी टूट गई, फिर बाद में अवचेतन मन के थ्रू वो कैसे ठीक हो गया, सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी। तो ये जो अवचेतन मन का यूज जो बाहर के लोग कर रहे हैं उसमें भी जो अवचेतन मन का जो अवचेतन की शक्ति है उसका जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें भी क्या सभी सफल हो रहे हैं? कोई कोई तो मतलब कि किसी को सफल होने में 1 महीने लग जाता है, 1 महीने 2 महीने, किसी को सालों लग जाता है, किसी को पूरा जन्म में भी नहीं होता है। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? हम भी कोई संकल्प करते हैं तो किसी किसी संकल्प साकार हो जाते हैं, कोई कोई संकल्प साकार नहीं होते हैं। तो ये अंतर कहाँ से पड़ता है? ये जो संकल्प हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए उसका बार बार रिपीटेशन करना चाहिए, और दूसरा वो विश्वास, ये तो है मतलब कि ये हो गया संकल्प, लेकिन दूसरा भी और भी कारण है जो साथ संसार के लोगों को अभी उसका पता नहीं, जो बाबा हमें बता रहे हैं। जैसे हम कुछ समय के लिए यदि फार्मर किसान बन जाए तो अगर किसान को अच्छी फसल चाहिए तो क्या क्या चीज़ें आवश्यक है उसके लिए? एक तो अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए, जो हम अच्छे अच्छे संकल्पों के बारे में जानते हैं, जैसे सोमान के बारे में देखते हैं, वो हो गया बीज। दूसरा क्या आवश्यक चीज़ है? भूमि। भूमि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, भूमि, जमीन, जो एक तरह से संकल्प हमारे बीज है तो अवचेतन मन क्या है? वो भूमि है। तो भूमि को, भूमि में भी क्या देखना है कि कितना उसमें पोषक तत्व है, कितनी उसमें उसमें उर्वरा शक्ति है, उपजाऊ है वो। तो वो भूमि को तैयार करने के लिए बाबा ने क्या क्या बताए हैं? श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म, प्योरिटी का बल, फिर पुण्य की पूंजी इकट्ठा करना, अच्छे कर्म करना, अंदर बाहर एक सच्चाई सफाई रखना, ईश्वर के प्रति प्रेम, ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती है? वो धरनी को तैयार करती है। फिर उस धरनी में हम यदि बीज डालते हैं तो फलीभूत होता है। पानी, बाबा बताते हैं कि योग का धूप, स्मृति का पानी, ये सारी बातें बताते हैं बाबा। तो एक तो हो गया बीज, दूसरा हो गया धरनी। लेकिन बीज हो और धरनी हो, लेकिन अगर जमीन को कल्टीवेट नहीं किया गया है, अगर ऐसे ही जमीन पर फेंक देते हैं तो क्या होगा? वो फलभीत होगा नहीं, अंकुरित होता ही नहीं वो। तो हाँ, तो उसको कल्टीवेट करना मतलब कि जो हमने यहाँ पर जो 21 दिन के हमने फर्स्ट जो भट्टी की तप नदी के तीरा, उसमें कैसे अंदर मन की गहराई में उतरने का बताया गया हमें। तो उस अंतर मन की गहराई में उतरकर ही जब हम बीज, संकल्पों का बीज डालेंगे, फिर ये संकल्पों का बीज डालना एक अलग चीज़ है, फिर बाद में उसको होते हुए, साकार होते हुए भी देखना। जैसे यहाँ मॉर्निंग क्लास से भाई साहब ने बताया कि एक कोई भय है तो उसका अपोजिशन इमेज मतलब चित्र इमेजिन करना, क्रिएट करना, तो जाके वो ठीक रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में उतरने के लिए संकल्प पावरफुल, धरनी तैयार, फिर उसका कल्टीवेशन मतलब कि अंतर मन की गहराई तक पहुंचना। तो अभी हम कोई भी एक डर को लेते हैं और थोड़े समय के लिए उस अवचेतन मन की गहराई में उतरते हैं, तो कौन सा डर को निकालना चाहते हैं आप सभी? मेजोरिटी जैसे भाई साहब एक दिन बताए थे कि जैसे अकेले में सोने का डर, या अकेले कमरे में, या अंधकार का डर, अंधकार का। तो इस डर को हम अंतर मन की गहराई में उतरेंगे फिर निकलने का प्रयास करेंगे। तो बी अलर्ट। सबसे पहले एक लंबी सांस लेंगे। लंबी सांस लेने का एक बहुत फायदा है कि हमारे ब्रेन में जो डोपामिन केमिकल है वो रिलीज होता है, मेडिकल फील्ड की जो है उनको पता होगा, जिससे हम रिलैक्स होते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो लंबा सांस लेंगे, ट्रिपल लॉक, सबसे पहले हम यहाँ से बाबा कमरे में जाएंगे, बाबा से दृष्टि लेते हुए। फिर अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने दृष्टि लेते हुए। बाबा हमारे, बाप दादा हमारे सिर पर हाथ रखे, और हमारे सामने एक बहुत विशाल सागर को इमर्ज किया बाप दादा ने, बहुत विशाल सागर जिसमें ऊंची ऊंची लहरें हैं। ये लहरें और कुछ नहीं, हमारे जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के डर हैं, भय है। बाबा इशारा कर रहे हैं हमें सागर के बीच में जाने के लिए, सागर के मध्य में जाने के लिए। अपने आप को फरिश्ते रूप में देखते हुए हम सागर की लहरों के ऊपर से चलते हुए समुद्र के अंदर जा रहे हैं, बहुत दूर चलते जा रहे हैं। अब सागर का किनारा भी नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ बस ऊंची ऊंची लहरें, विशाल सागर। मैं फरिश्ता अब सागर की गहराई की तरफ उतर रहा हूं। धीरे धीरे हम सागर की गहराई में उतरेंगे, धीरे धीरे। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, लहरें शांत शांत होती जा रही है। और धीरे धीरे नीचे की तरफ, धीरे धीरे हमारा ये फरिश्ता रूप का लोप हो जाता है। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, और गहराई की तरफ, बिल्कुल सागर सागर की तले की तरफ धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। सागर की गहराई में बिल्कुल शांति है, कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांत है, स्थिर है। धीरे धीरे हम बिल्कुल सागर सागर के तले में पहुंच गए। जहाँ चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, महसूस करेंगे हम उस सन्नाटे को, शांति को। वास्तव में हम परमधाम में हैं, परमधाम में दिव्य लाइट को देखे, चारों तरफ दिव्य प्रकाश है। जहां गहरी शांति है, स्तब्धता है, जहां स्तब्धता है, जहां सामने ज्योति बिंद शिव बाबा को देखेंगे। बाबा से अपने में शक्तियां भरते हुए बहुत ही शक्तिशाली अनुभव करेंगे। शांति, सुख, प्रेम की गहरी अनुभूति हो रही है। चित्त शांत हो चुका है। एकदम शांत, अब मैं एक विजन को सामने क्रिएट करते हैं। एक बहुत बड़ा मकान है, उसके अंदर प्रवेश करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं, हल्की हल्की रोशनी है, कहाँ कहाँ पर अंधेरा है। एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहां बिल्कुल अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आप बाबा को अपने साथ में देखेंगे, कोई भी डर नहीं, कोई भी भय नहीं। बाबा मेरे साथ है, अंधेरे से हम बातें करेंगे। अंधेरे, आप कितने अच्छे हो, आपके सानिध्य में हम आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, नींद करते हैं। आपके सानिध्य में तो जमी के अंदर जो बीज होता है वो अंकुरित होता है। अंधकार में ही तो पुष्प खिलते हैं। ये अंधकार से कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। आई लव डार्कनेस, आई लव लोनलीनेस। मेरा डर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ। डर और भय से बिल्कुल मुक्त हुए। मैं कमरे के बाहर आता हूँ। फिर अपने आप को परमधाम में अनुभव करता हूँ, बाबा के पास। फिर सुचमुतन में बाप दादा के सामने दृष्टि लेते हुए पुनः बाबा के कमरे में आ जाएं। और फिर यहां अपने तन में शांति।